Garfield, dos Peru en Faminas, Meri Jaan Ruh Dil Se Vabas, Hamiyasto. Ghar Firdaus Par Rooh-e Zameen, Hamiyasto. Meri Jaan Ruh Dil Se Vabas, Hamiyasto. के कहा हमें आदत है हमी अस्तो चल से लम्हों ने रुक के कहा इनायत है हमी अस्तो पंछी सारे उड़ गए कहीं बस घोंसले हैं हमी अस्तो हर जन्नत है जमीन पे कहीं यहीं पे है हमी अस्तो
शांति। पंछी सारे उड़ गए बस घोंसले रह गए, ऐसी स्थिति है उस स्थान की जिसको कभी अमीर खुसरो ने कहा था हमी अस्तो, हमी अस्तो। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे ये यज्ञ एकमात्र है संसार में, यही है, यही है, यही है। घर फिरदौस बर रूह जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। यदि धरती पर, इस धरा पर फिरदौस है, स्वर्ग है, बहिष्ट है, पैराडाइज है, हेवन है, यही है, यही है और यही है। तो पिछली बार हमने 30 बातें देखी थी, आज 33 बातें देखनी है। ये जो आशियाना है, ये जो घोंसला है, जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। इस घोंसले के एक एक तिनके का महत्व है। ये केवल एक चीज नहीं है, असंख्य तिनकों से यह घोंसला बना हुआ है। तो पिछली बार हमने 30 तिनके देखे थे, अभी आगे ब्रह्मा कुमारी क्या है, ये यज्ञ क्या है, तो 31वां है ये यज्ञ मधुबन है। हम ये कहते हैं कि मधुबन यज्ञ है, परंतु यज्ञ भी मधुबन है, और मधुबन अर्थात मधु का वन, जिसमें दो चीजें होनी चाहिए, कौन सी, मधुरता भी और साथ साथ वैराग्य भी। और यदि ये मधुबन है, यदि ये यज्ञ ही मधुबन है, तो इसकी ये दोनों ही बातें हमारे जीवन में चरितार्थ होनी चाहिए, स्वीटनेस एंड डिसइंटरेस्ट। जहां पर मधुरता भी हो तो क्या हो, वैराग हो। परंतु क्योंकि हम सूखे सन्यासी नहीं है, हमारे जीवन में वैराग तो है, परंतु वैराग के साथ साथ दिव्य मधुरता भी है। इसके लिए यदि ये मधुबन है, तो ये दो चीजें हमें होनी चाहिए, मधुरता और वैराग। वैराग अर्थात यहां का कुछ भी नहीं चाहिए, वैराग अर्थात यहां की कोई भी चीज हमारे सुख का कारण नहीं है। आज के मुरली में बाबा ने कहा यह घोस्टों की दुनिया है, कन्या है कुमारी है परंतु मोह बहुत है, बाप से बेमुख करता है ये मोह का घोस्ट, काम विकार घोस्ट है, आदि मध्य अंत दुख देता है, विकारों से वैराग, व्यर्थ से वैराग, निगेटिविटी से वैराग, अतीत से वैराग, जो कुछ पुराना है जो बीत गया है उससे भी वैराग। नवपथ है, नवजीवन है, नया मार्ग है, साहस साथी है, सफलता जन सिद्ध अधिकार है, नशा है अपनी घोट तो नशा चढ़े, एक से बुद्धि योग है, ये वैराग और मधुरता, ये दो चीजें होनी चाहिए यदि हम इस यज्ञ के भांति है, यदि इस संस्था के हम मेंबर्स है, यदि इस ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर्स है। तो मधुबन यज्ञ क्या है, मधुबन है। अगला मधुबन मेडिटेशन यज्ञ मेडिटेशन सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर, मेडिटेशन सेंटर अर्थात जहां पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, अर्थात हम कौन हुए, ट्रेनर्स, मेडिटेशन सिखाने वाले। तो जिनको मेडिटेशन जो सिखाने वाले हैं, उनको खुद मेडिटेशन की गहराई को समझना पड़ेगा, मेडिटेशन है क्या, किसे कहते हैं ध्यान। इसके लिए बाबा ने कितने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, याद, योग, यात्रा और ध्यान, पहले निष्ठा कहते थे। तो ये यज्ञ क्या है, मेडिटेशन सेंटर, और हम लोग वो है जो मेडिटेशन सिखाने वाले हैं। तो मेडिटेशन की सारी गहराई हमें पता चाहिए, क्योंकि जो सिखाना है उसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना। तो एक एक्सपेरिमेंट जो हर एक को करते रहना है, योग की गहराई का, जो आज सुबह अमृत वेला अनुभव किया, क्या यह वो योग की संपूर्ण गहराई थी, क्या ये इसमें ही योग की सारी अवस्थाएं आ गई थी, योग है क्या, मेडिटेशन है क्या, क्या अभी भी खेचातान है, अभी भी तनाव है, अभी भी नींद है, अभी भी आलस्य है इस मेडिटेशन में। यदि मेडिटेशन सिखाने वाले ही मेडिटेशन करते हुए नींद में है तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। यदि मेडिटेशन करने वालों की मेडिटेशन टाइमिंग अभी भी कम अब कभी ऊपर कभी नीचे है, कल कहा ना लाइट, स्पीड कैसी है, कलर तो नहीं बदलता, और निरंतरता कितनी है। महत्व ये नहीं है कि बहुत ही जल्दी उठ जाओ और योग करते बैठो, महत्व है कंसिस्टेंसी का। भले उठो 4:15 बजे या 4 बजे, पर फिर वही टाइम फिक्स हो, जितना हो सके टाइमिंग फिक्स हो हमारे मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन से संबंधित जितनी बातें हैं, मेडिटेशन और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, मेडिटेशन और इमोशंस का क्या संबंध है, मेडिटेशन और थॉट्स का क्या संबंध है, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन का क्या संबंध है, मेडिटेशन और व्यवहार का क्या संबंध है, मेडिटेशन और लाइफस्टाइल का क्या संबंध है, मेडिटेशन और बीमारियों का क्या संबंध है, मेडिटेशन से संबंधित सारी जानकारी हमारे पास हो तो ये क्या है, वर्ल्ड मेडिटेशन सेंटर है। यहां पर विश्व की आत्माएं क्या सीखने आती है, मेडिटेशन सीखने आती है। मेडिटेशन और स्ट्रेस का क्या संबंध है, किस आधार से स्ट्रेस कम होगा, मेडिटेशन और फिजियोलॉजी का क्या संबंध है, शरीर में कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं मेडिटेशन से। यदि हमें कोई पूछ ले तो हम क्या कहेंगे कि ये बात मुझे पता नहीं, कोई कहे कि बताओ मुझे स्ट्रेस कैसे कम होता है, या ऐसे ही गप लगाते हो पड़ोस से, कब तक मिलाते रहोगे हर बार कब तक यही बात कहते रहेंगे, ये एक दूसरी बात है, एक सूक्ष्म पॉइंट, कब तक हम दूसरों को ये कहते रहेंगे कि बाबा ने ये बताया नहीं, ये मुझे पता नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं तो तुम कर क्या रहे हो ये संस्था में बैठकर, क्यों पता नहीं, ना पता होना क्या अपराध नहीं है, तुमने जानकारी क्यों नहीं हासिल की। फिर कोई गाइड है, हमको माउंट आबू घूमना है, और गाइड से हम कहे इधर से वहां कैसे जाना, वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं, मैं 40 साल से गाइड की सेवा कर रहा हूं, पर ये मुझे पता मत, ये मत पूछना, ये रास्ता मुझे पता नहीं। तो क्यों नहीं पता, तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको पता करना चाहिए था, तुमको सारी जानकारी रखनी चाहिए, कहां से कौन से मार्ग है और शॉर्टकट का कौन सा है हाँ पर वो भी तो पता है, मम्मा कहती थी ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान सुनाना है उसका भी तुमको ज्ञान होना चाहिए, योग याद की भी याद होनी चाहिए कि याद करना है, इसकी भी तो याद चाहिए कि मुझे शाम की याद करनी है, इसकी भी याद चाहिए, ज्ञान कैसे सुनाना है उसका भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान का ज्ञान, याद की याद, धारणा की धारणा, और सेवा की सेवा, ये भी अच्छा टॉपिक है तो ये क्या है, मेडिटेशन सेंटर। तो मेडिटेशन के सारे इंस आउट्स, सारी बातें, गहराई, सूक्ष्म पहलू, मेडिटेशन का वर्तमान परिवेश में क्या महत्व है, मेडिटेशन एंड टेररिज्म क्या संबंध है, मेडिटेशन एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या संबंध है, मेडिटेशन एंड फूड क्या संबंध है, मेडिटेशन एंड एग्रीकल्चर क्या संबंध है, यौगिक खेती, मेडिटेशन एंड ट्रांसपोर्ट क्या संबंध है, मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स क्या संबंध है। ये मेडिटेशन सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर अर्थात वी आर मेडिटेशन एक्सपर्ट्स, किसी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट है हम, किसी एक्सपर्ट के पास पेशेंट चला जाए और कहे कि इसका क्या, वो कहेगा मैंने न्यूरोलॉजी तो की है पर हेडेक का मुझे पता नहीं क्या है तुम्हारा, ये एक चैप्टर मेरा रह गया था, बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर था और एग्जाम में भी नहीं आया था। तो ये मेडिटेशन सेंटर है। तीसरा 33rd, ये मेडिकल कॉलेज है। ये संस्था क्या है, मेडिकल कॉलेज। यहां कौन बनते हैं, कौन बन के निकलते हो मंजूबेन, रूहानी डॉक्टर्स, यहाँ पर स्पिरिचुअल मेडिसिन का ज्ञान दिया जाता है, यहाँ पर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स बन के निकलते हैं, डबल डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। ये वो मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी टफ होती है। बाबा हमेशा उदाहरण देते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में बैठ जाए तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो ये मेडिकल की मेडिकल कॉलेज है और ये मेडिकल स्टडी है, वो तो किताबों में शरीर की बीमारियों का अध्ययन है, यहां पर स्पिरिचुअल एनाटॉमी, स्पिरिचुअल फिजियोलॉजी, स्पिरिचुअल पैथोलॉजी, स्पिरिचुअल मेडिसिन, स्पिरिचुअल सर्जरी क्या होती है इसका ज्ञान है। तो इसमें मेडिकल स्टूडेंट का एक लक्षण ये होता है, आशीष भाई क्या करता है वो लाइब्रेरी में बैठ बैठ कर अध्ययन, दिन रात पढ़ते रहता है, पढ़ता रहता है, फिर पेशेंट देखता है, पढ़ते रहता है, पेशेंट देखता है, पढ़ते रहता है, फिर पेशेंट देखता है। उसके दो टीचर्स होते हैं, एक पेशेंट, एक किताबें, और एक उसके प्राध्यापक। तो दोनों से सीखते रहता है जीवन भर। तो हम कौन है? मेडिकल स्टूडेंट से। तो हमें क्या करना है? पढ़ाई, पढ़ाई करते रहना है दिन रात। पढ़ाई बहुत है क्योंकि बीमारियां इतनी सूक्ष्म है आत्माओं की कि हमें उनको इलाज देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमको तो हमारे सिलेबस में ये बीमारी नहीं थी, तुम कहां से आ गए, किस ग्रह से टपके। ऐसी बीमारियां कि जिसका हमने कभी सुना ही नहीं, सोचा भी नहीं, ऐसी बीमारियां लेके लोग आते हैं। तो हमें सारी अव्यक्त वाणियों का स्टडी करते रहना पड़ेगा, सारी अव्यक्त वाणी 69 से लेकर तो 2017। हाँ, 15 अगस्त 19 में पूरा हो जाना चाहिए। 15 अगस्त से चालू किया ना हमने, एक साल का मेगा प्रोजेक्ट, सारी अव्यक्त वाणियां एक बार तो हो जानी चाहिए हर एक की। बहुत आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा दिनचर्या में, ऐसे नहीं होगा। यहां किसी की हुई है? शायद एक ही है जिसकी हुई है, कुशल भाई, एकमात्र कुशल भाई है जिसकी सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ के हुई है। तो महाप्रोजेक्ट। तो ये मेडिकल कॉलेज है, स्टडी करते रहना है, यहां पर रेफरेंस बुक्स लेते रहना, डिस्कशन करना पड़ता है। मेडिकल की सारी चीजें खाली पढ़ने से नहीं समझ में आती है, डिस्कस करना पड़ता है आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर, ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या, क्योंकि इतना कंफ्यूजन रहता है कुछ कुछ नाम में, और बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, ढेर सारी बीमारियां, उसके ढेर सारी दवाइयां, और उस दवाइयों के भी अलग अलग नाम, एक ही दवाई को 50 कंपनियां बनाती है। तो मेडिकल कॉलेज है ये यज्ञ, फिर ये मॉडल ऑफ हेवन है, स्वर्ग का मॉडल है ये। और यदि हम स्वर्ग के मॉडल में हैं, हम कौन हुए? परिजादे। हम कौन हुए? वो राजकुमार स्वर्ग के। तो वो कितनी दिव्यता हम में होनी चाहिए यदि हम स्वर्ग में रहने वाले हैं। और स्वर्ग में बहने रहने वालों के जीवन में व्यर्थ नहीं हो सकता, वेस्ट नहीं हो सकता, और कल की मुरली से इम्प्यूरिटी नहीं हो सकती। चरित्र का आधार ही प्यूरिटी है, सत्यता है, और चरित्र का आधार ही बाप से संबंध है। तीन, प्रकाश कितना फैल रहा है, सितारा कितना चमक रहा है, हर्षित मुक्तता और स्पष्टता कितनी है। तो ये क्या है? स्वर्ग का मॉडल। और यही स्वर्ग का मॉडल है, और कहीं स्वर्ग नहीं। हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। वो स्वर्ग में तो आज क्या है, खामोश दरख्तों पर है खौफ सोया सा, क्या था गीत में, खौफ है कश्मीर, सबसे पुरानी समस्या है भारत की, सबसे पुरानी, खौफ ही खौफ है, मुरझाते गुलों ने कहा, हमी अस्तु, हमी अस्तु, वो गुल भी मुरझा रहे हैं, रुकते लम्हों ने कहा, हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। तो वो हमी अस्तु नहीं है, ये हमी अस्तु है, एकमात्र यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, और यही स्वर्ग है। उसके बाद में ये माइट हाउस है, ये यज्ञ क्या है? माइट हाउस। और इसके अंदर रहने वाले या तो डरपोक, कमजोर, रोने वाले रहते माइट हाउस में और आंसू बहुत आते हैं, बात बात पर आंसू आते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया आंसू, किसी ने कुछ कर दिया आंसू, यहां पे रखे हुए हैं जैसे अपनी, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है रोना। कॉकरोच से डरते हो, चिपकली से डरते हैं, ये है माइट हाउस में रहने वाले, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है शक्ति रूप में, भक्त मांगते मां शक्ति दो और मां कहती है कॉकरोच, चिपकली, कौन से डर बैठे हैं पता नहीं, जानवरों के डर, बीमारियों के डर, व्यक्तियों के डर, सारे जानवरों का डर कभी, क्योंकि ये डर भी ऐसा है सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, इसका उस चूहे से और चिपकली से कोई संबंध नहीं, सबकॉन्शियस एक संस्कार बना है। जैसे नेपोलियन बड़े से बड़े शेर से लड़ सकता था पर डर था बिल्ली का, और आखिर में उसकी जो हार हुई बिल्ली की वजह से हुई, उसके शत्रु को पता चला कि इसको बिल्ली का भय है, 20 बिल्लियां लेके आया बैटल ऑफ वाटरलू में क्योंकि नेपोलियन जब 6 मास का था और पालने में था, मां कहीं और चली गई, दाई थी, और एक जंगली बिल्ली ने आक्रमण कर दिया, 6 मास का पालने में था वो तो बच गया, बिल्ली कहीं और चली गई, पर उसके सबकॉन्शियस अवचेतन मन में बिल्लियों का भय तब से था। वो बड़ी से बड़ी शत्रुओं को हरा सकता था। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, वो कहता था असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में, मेरे नहीं, पर आखिर में हार हुई बिल्लियों ने हरा दिया उसको। वो यदि किसी को जानवरों का भय है, शेर, शेर तो सबको रहता है भालू वो तो सबको है ठीक है, परंतु जो छोटे छोटे चीजें हैं जिनका बहुत भय होता है, बंदर भी कोई कम नहीं है वैसे तो, बाकी हमारे आबू के बंदर अच्छे हैं, हमने बाहर के खतरनाक खूंखार बंदर देखे, एकदम आक्रमण करते हैं, माबू के तो भी ठीक है तो भय, हम कौन है, माइट हाउस में रहने वाले अर्थात पावरफुल, शक्तिशाली होने चाहिए, छोटी मोटी चीजों से डरने वाले नहीं, ये हो गया वो हो गया डर जाओ, डरने से कुछ होने वाला है क्या, और ही चीजें और ही भयभीत होते, कोई भी चीज हमको डराए नहीं, आर पार देख लेना, आंखों में आंखें डाल के देखना उसके, डर डर के मारे भाग जाएगा, डर ही भाग जाएगा। हाँ तो कुत्ते का भी वो दिखाया है स्वामी विवेकानंद के जीवन में, एक बार वो तो सन्यासी थे, घूम रहे थे, विदेश अभी गए नहीं थे, भारत में ही थे, भारत के यात्रा कर रहे थे, और 2-3 कुत्ते, बंदर थे या कुत्ते थे, उनके पीछे लगे और भागने लगे, तो एक सन्यासी ने देखा, अरे ये सन्यासी हो के कुत्तों से, बंदरों से, कुत्ते थे बंदर थे जो भी, उनसे डरता है, वो कहता है स्टॉप देयर एंड फेस द ब्रूट्स, वहां खड़े रहो और उनकी आंखों में झांक कर देखो, तो रुक जाते और उनकी आंखों में झांक के देखते वो भाग जाते। तो जितना हम डरेंगे उतना और डराते हैं वो, जब उसको पता चलता है ये मुझसे डरता है तो माया का घोस्ट, आज कहा ना घोस्टों की दुनिया है, बहुत डराएगा घोस्ट, घोस्ट अर्थात भूत, भूतों का डर, हम कौन है, भूतनाथ की संतान हम है, भूतेश्वर, मास्टर भूतेश्वर, भूत हमसे डरे, ये कौन महाभूत है, हमको देखकर उसको लगे भागो तो हम महाभूत है, भूत हमसे डर के भाग जाए, हम माइट हाउस में रहने वाले। तो भगवान ने ये माइट हाउस स्थापन किया है, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। फिर उसके बाद ये नेचर की वह सेंटर है, ये यज्ञ क्या है, नेचर क्यूअर सेंटर, लोग जाते हैं ना आजकल नेचर क्यूअर करने, डिटॉक्स करने, नेचर क्यूअर सेंटर अर्थात वहां पर डाइट के द्वारा या प्राकृतिक इलाज जहां कराया जाता है, बाबा भी ड्रगलेस थेरेपी देता है, कौन सा इंजेक्शन है, ज्ञान का, सीधा आत्मा में लगता है, यहां पे इंटरक्रेनियल, यहां पे इंजेक्शन लगाता है सीधा ब्रेन में, आत्मा में, अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो ये नेचर क्यूर सेंटर है जहां पर बहुत सारी ऐसी ड्रगलेस थेरेपी दी जाती है, और यहां पर बीमार आत्मा है। तो ये भगवान ने आकर क्या खोला है, स्पिरिचुअल रूहानी नेचर क्यूर सेंटर, वो स्पिरिचुअल हर्बैलिस्ट, कई बार मुरलियों में आता है, हर्बैलिस्ट है। फिर ये न्यू गार्लैंड है, न्यू गार्लैंड अर्थात नई माला है ये यज्ञ। इसमें ये यज्ञ का एक एक गार्लैंड, एक एक फूल महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या बनना है, फूल, गुल, गुल गुल, तब ये गुलशन में ये बाहर आएगी। और ये न्यू गार्लैंड है यज्ञ, दिस यज्ञ इज अ न्यू गार्लैंड, ओल्ड गार्लैंड तो सूख गया है। अगला, ये ऑर्केस्ट्रा ऑफ गॉड है, ये यज्ञ क्या है, भगवान का ऑर्केस्ट्रा। और हम सब कौन है, माली माली, माली कहां से आ गए, म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा, तो अलग अलग बजाने वाले, अलग अलग कला वाले, और दे शुड बी अ सिम्फनी, सब में एक समस्वरता चाहिए, हार्मनी चाहिए, तभी वो परमात्म संगीत गूंजेगा विश्व में और प्रत्यक्षता होगी, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु, तब वो प्रत्यक्षता होगी। यदि कोई अपने आप में कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कैसा म्यूजिक निकलेगा, म्यूजिक होगा या बेसुरा होगा, बेतुका होगा, अमधुरवाणी ग्रुप बन जाएगा ये गैर मधुरवाणी ग्रुप बन जाएगा तो मधुरवाणी नहीं रहेगा फिर वो। तो हम सब परमात्मा ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले कलाकार है, फनकार है, एक एक में ऐसी कला है। और हमको केवल अपना कला का गर्व नहीं है, परंतु हम सबके साथ चल रहे हैं, सबके साथ अपने सुरों को मिला रहे, अपने संगीत को मिला रहे, ये हमारी महानता है। तो यहां जब ये भगवान का ऑर्केस्ट्रा है तो क्या हो, संस्कार मिलन की रास हो, दो व्यक्तियों में झगड़े ना हो, दो व्यक्तियों में मनमुटाव ना हो, दो व्यक्तियों में मनोमालिन्य, दो व्यक्तियों में आपस में लून पानी ना हो, एकजुट एक चंदन का वृक्ष है ये बाबा ने कहा, वन वन की काठी है, परंतु फिर भी एक संस्कार सबके है, एक बाप, कल की मुरली टीचर से मुलाकात, एक के है, एक को देखने वाले हैं, एक रस स्थिति में रहने वाले हैं। तो ये ऑर्केस्ट्रा ऑफ गॉड में हमको ये ऐसा बेतुका संगीत न छेड़ दे जिससे पूरे यज्ञ की ही ग्लानि हो जाए। तो ये ऑर्केस्ट्रा ऑफ गॉड है। उसके बाद में ये पांडव गवर्नमेंट कैबिनेट है, पांडव गवर्नमेंट का मुख्यालय, ये यज्ञ पांडव गवर्नमेंट का कैबिनेट, यहां पर सारी सभाएं होती है, यहां पर विधि विधान बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये है विश्व की। हमारी स्थिति वर्तमान के पार्लियामेंट जैसी ना हो जाए वहां पर बहुत आवाज करते हैं, यहां प्रेम से सारे कार्य हो, ऐसा ये पांडव गवर्नमेंट कैबिनेट है। उसके बाद में ये पीस पार्क है, ये यज्ञ क्या है, एक पीस पार्क है, और एकमात्र हमी अस्तु एकमात्र यही पीस पार्क है। तो यहां रहने वाले यदि पीसलेस है और अशांत है तो क्या कहेंगे, संडे की मुरली जैसे, कोई आशा, कोई प्यासा होता है और उसकी कोई प्यास बुझाता है तो जन्म जन्म उसका गुणगान करते हैं। तुम्हें क्या करना है, राजयोग सिखाना है और संसार की आत्माओं की प्यास बुझानी है ये ज्ञान देकर। तो हम सब कौन है, पीस मेकर्स, पीस मैसेंजर्स, पीस इनकार्नेशन, पीस अवतार, पीस एंजल्स, शांति के फरिश्ते, शांति के अवतार, शांति कुंड हम स्वयं है, विश्व में शांति स्थापित करने वाले। हमारा अपना जीवन आंतरिक कितना शांत होना चाहिए, यदि मन में अशांति है तो ये पीस पार्क हुआ कि पीसलेस पार्क हुआ, कि पीस पीस वाला पार्क हुआ, पिसा हुआ पार्क, पार्क ब्रोकन इनटू पीसेस, पीसेस तो संसार में हुए, ऐसे पीसलेस वर्ल्ड को, पीसेस में बटे हुए वर्ल्ड को हमको पीसफुल बनाना है। तो सबसे पहले तो चेतना में शांति को धारण करना पड़ेगा। उसके बाद में ये क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस कंट्रोल है, क्यू फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस कंट्रोल सेंटर। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर जगह पर जो कि स्टैंडर्ड देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल में NABH एक होता है, वो स्टैंडर्ड देखता है। जैसे और दूसरे दूसरे स्थानों पर कंपनियों में स्टैंडर्ड्स होते हैं, मापदंड, ISI मार्क, ये सारे मापदंड होते, मानदंड होते, ट्रेडमार्क होते हैं उनके। तो वैसे ये जो है क्वालिटी मार्क है, ये जो यज्ञ है इसमें देखकर इसमें डिसाइड किया जाएगा कि तुम जो कुछ कर रहे हो पुरुषार्थ ठीक है, ठप्पा लगाया जाएगा। वहां ISI का ठप्पा लगाते हैं ना कि यहां ये ठीक है, वैसे यहां पर तुम्हारा पुरुषार्थ में यहां ठप्पा लगना चाहिए, सर्टिफिकेट मिलने चाहिए तीनों से, बाप से, स्वयं से और परिवार से। परिवार वाला मुश्किल है थोड़ा, पर वो चाहिए। फिर है रेस्ट हाउस, आर फॉर, ये यज्ञ क्या है, रेस्ट हाउस। यहां पर क्या है, आराम, यहां आकर ही आराम मिलता है, यही हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। और कोई संसार में स्थान है जो रेस्ट हाउस है, कहीं पर भी रेस्ट नहीं है, रेस्ट यहां है जहां पर भगवान के पैर पड़े हैं। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। भगवान के, भगवान ने अपने चरण कमल यहां रखे हैं, उसके पुनीत पग से ये भूमि पावन हुई है, ऐसा ये स्थान है रेस्ट हाउस। फिर उसके बाद में ये स्कूल है, तो अरविंद भाई ये स्कूल है तो हमें क्या बनना पड़ेगा, कैसे स्टूडेंट, नंबर वन और स्मार्ट स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट बनना पड़ेगा, स्मार्ट। स्मार्ट स्टूडेंट कैसे होता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है कभी। स्मार्ट स्टूडेंट्स की कंपनी भी किसके साथ रखता है, वो स्मार्ट स्टूडेंट्स के साथ जो उससे थोड़े ज्यादा होशियार है या उसके समान वाले है। मूर्खों के साथ नहीं कंपनी करता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता है कभी, स्टडी को करते रहता है, स्टडी की मेथड ढूंढते रहता है किस तरह से स्टडी को पढ़ा जाए, और मोटिवेशन कैसे कैसे उसको मोटिवेट ढूंढते रहता है कुछ ना कुछ। और दूसरे स्टूडेंट्स को भी मदद करता है, कमजोर सबको। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, ये स्कूल है, ईश्वरीय स्कूल बाबा ने आके खोली है। वो जो कराची में बाबा ने स्कूल खोली थी, वहां बोर्ड पे तीन चीजें लिखी थी, कौन सी, पहला रोना मना है, ये एक ही रूल ऐसा था कि जिससे बहुत सारी धारणाएं आ जाती। दूसरा रूल, कराची में जो स्कूल खोली थी बाबा ने, बोर्ड पर तीन इंस्ट्रक्शंस थे स्कूल के विषय में, हाँ उसमें आ गया, पहला रोना मना है, दूसरा दुख देना और लेना, और तीसरा प्यूरिटी। ये तीन चीजें थी, दुख ना दा ये तो सबने कहा, पर दुख लेना भी पाप है, ये भगवान ने ही आके कहा। दुखी हो जाना, किसी ने कुछ कह दिया और तुम दुखी हो गए, बस यही है ज्ञान योग की धारणा है। कोई भी आ जाए ऐरा गहरा नथु खेरा और हमको डिस्टर्ब करके चला जाए, नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डिस्टर्ब अस। हमारी धारणा इतनी कमजोर नहीं है, हमारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, और तो किसी और को यह अधिकार भी नहीं है कि उसे छीन ले। हमारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, इसलिए किसी और को यह अधिकार भी नहीं है कि हमारी खुशी को छीन कर ले जाए। तो ये क्या हुआ, स्कूल। फिर ये शॉपिंग मॉल है, 44th, ये शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल, मॉल देखा है, अमाउंट में तो एक या दो ही है छोटे छोटे, वो भी मॉल बहुत बड़ा होता है, वहां सब कुछ मिलता है, बस घुस जाओ और जो चाहिए वो ले लो, सब एक ही जगह पर। वैसे यहां पर भी सब मिलता है, कोई दूसरा कॉलेज होता है वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ नहीं, वो हॉस्पिटल में दूसरे कॉलेजेस में मनोविज्ञान का एक विभाग होता है, दर्शन शास्त्र का एक विभाग होता है, यहां तो सब कुछ एक ही जगह है, सब एक जगह है। तो ये क्या है, शॉपिंग मॉल। फिर है ये शिवालय है, शिवालय अर्थात प्योर, शिवालय अर्थात पवित्र, शिवालय अर्थात मंदिर है शिव का। अगर ये शिव का मंदिर है और हम सब कौन हुए फिर, पुजारी तो अभी है नहीं मंदिर की देखभाल करने वाले है, ट्रस्टी है, मंदिर में ट्रस्टी होते हैं ना, तो हम वैसे ट्रस्टी है और दूसरों को मंदिर लायक बनाने वाले हैं। या फिर इस मंदिर के देवता कौन है? हम ही है मूर्ति। जैसे वो रामकृष्ण परमहंस से एक कहानी बताया करते थे, एक खंडर था, पहले मंदिर था बहुत अच्छा, अभी तो खंडर बन चुका था, वहां कोई नहीं आता था, चिड़िया और गिद्ध और इन सब का बसेरा था वहां पर, जाली हुई लगी हुई थी, वो मूर्ति भी टूटी हुई थी और वहां पर एकदम खंडर जैसा था। एक बार एक व्यक्ति गया वहां पर, वो थोड़ा सा दिमाग से कमजोर था, उसने शंख मिल गया और वहां जाकर शंख बजाना चालू करा। लोगों को लगा शायद मंदिर बन चुका है, ठीक हो गया, किसी ने ठीक कर दिया होगा, गांव के बाहर है, सब लोग भागे पूजा करने। तो देखा मंदिर तो वैसा ही है, तो उसको कहते अरे तूने मंदिर को ये तो बजा दिया, पर मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठापना तो हुई नहीं, मंदिर को ऐसे कैसे, मंदिर को तो पहले स्वच्छ किया जाता है, ये सारी जाली ये सब जो है गंदगी इसको निकाला जाता है, उसके बाद में मूर्ति आती है, उसके बाद में शंख बजाया जाता है, तुमने पैसे कैसे शंख बजा दिया। हृदय भी मंदिर है, अगर वो खंडर है और उसमें कीचड़ा है तो मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। तो ये क्या है, यज्ञ शिवालय है। फिर उसके बाद में ये ट्री ऑफ सैंडलहुड अर्थात चंदन का वृक्ष, जिसके बारे में बता दिया, अलग अलग संस्कार वाली आत्माएं यहां आई है, अभी अच्छा है, अलग अलग संस्कार वाली है, हम कहते हैं ये ऐसा इसका संस्कार ऐसा की हुई, ये झगड़ा बहुत करता है, ये सोता है, ये हमको जीने नहीं देता, तंग करता है, सताता है, ऐसी संस्कार वाली आत्माएं मंजू बहन यही मिलेगी, कितना वंडरफुल है, सतयुग में तो रहेगी, सब धुलाई हो जाए होके आएगी, फिर क्या है वहां, अभी है मजा, कितना वैरायटी संस्कार है। कभी हम ये सोचे कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सब चले तो क्या मजा है इसमें, कुछ भी मजा नहीं है इसमें। तो ये चंदन का वृक्ष है, फिर ये ताजमहल ऑफ डिवाइन लव है, वो जैसे ताजमहल यादगार है प्रेम का, वैसे ये परमात्मा प्रेम का यादगार ये है यज्ञ, सबसे सुंदर हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु। फिर उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी है, एक तो बताया स्कूल, स्कूल की पढ़ाई और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में थोड़ा फर्क होता है, जब आए थे तब स्कूल, पर अभी वो यूनिवर्सिटी अर्थात ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, रेफरेंस बुक्स लेनी पड़ती है, इसमें तोता रटन काम नहीं करेगा, अब खुद भी सोचना पड़ेगा, पीएचडी कर लिए वो ये थीसिस बनाते हैं, बहुत लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, भटकना पड़ता है, यहां जगह आर्टिकल जमा करने पड़ते, बहुत कुछ करना पड़ता है उसमें। तो ये यूनिवर्सिटी में भी अव्यक्त मुरली, एक मुरली यहां से, एक मुरली वहां से, साकार यहां से, अव्यक्त से, इधर से कुछ निकाला, किसी क्लास से कुछ निकाला, तो बहुत काम करना पड़ेगा इधर भी, तो रिसर्च करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में भी। फिर ये अनलिमिटेड लॉन्ड्री है, बेहद का धोबी घाट, क्या है ये धोबी घाट, तो यहां पर बहुत कपड़े आ रहे हैं, हम यहां के धोबी है, हम भी धोबी हैं, यहां की मास्टर धोबी, हमारे पास भी लोग कपड़े लेकर आएंगे, हम ये नहीं कह सकते इतना गंदा क्यों किया, क्या धोबी कभी ऐसा कहता है इतना गंदा कर दिया तुमने कपड़ा, कभी नहीं कहता, जो भी आया चुपचाप ले लेता है, तुम ये नहीं कह सकते अरे इतने पतित इतने विकारी चले जाओ यहां से, ये हमारा सेंटर बहुत प्योर है, पैर मत रखना इधर इधर धुलाई नहीं होती, जाओ कहां जाएगा बेचारा, एक ही तो धोबी घाट है, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, शराब पी के नहीं आना, हम ऐसा बोल सकते, यहां सिगरेट नहीं पीना, कुछ नहीं, वो जो भी है कितनी भी गंदगी है, भगवान ने हमको कहा ऐसा, हे पतित आउट, जब हम पहली बार आए थे बोला उसने ऐसा, हम भी तो वही कर रहे थे जो संसार के लोग कर रहे थे, या हम बहुत ही अवतरित दिव्य आत्मा होके प्रकट हुए थे कलयुग में, सीधा ऊपर से, वही पाप और वही विकार और वही भक्ति की रस हम में भी थी। आज की मुरली में एक वाक्य है, छोड़ो इन सब चीजों को, शुरुआत में ही है बाबा ने कहा, वो लोग माला फेरते हैं, किसमें माला फेरते हैं मंजू भाई, कौन सा है वो कपड़ा, गौमुख, छोड़ो इन सब भक्ति की बातों को, वो मात पिता बनकर आया है, उसके तीन, एक गीत के तीन अर्थ बताया है बाबा ने, तुम मात पिता हम बालक तेरा, पहला वो पिता है, दूसरा हम भाई बहन हो गए, विकार की दृष्टि नहीं जा सकती, तीसरा क्योंकि वो पिता है तो वो रचता है स्वर्ग का, ये तीन अर्थ है मुरली का, फर्स्ट पैराग्राफ आज की साकार मुरली। तो ये क्या है, लॉन्ड्री है, धुलाई चालू है, इधर कमी नहीं होनी चाहिए साबुन की और पानी की और डिटर्जेंट की, भरपूर मात्रा में रखो क्योंकि बहुत आएंगे, और ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे दाग, खून के धब्बे, रक्त रंजित, ऐसे ऐसे दाग लेकर लोग आएंगे। हम ये नहीं कह सकते ये खून का दाग क्यों लगाया तुमने, हम ये नहीं सकते, कहां किसी का खून बिन तो नहीं किया, ये काला लाल कैसे हुआ, नो क्वेश्चंस, जो भी आ जाए धुलाई कर दो और दे दो। फिर ये अनलिमिटेड क्लब है, ये क्या है, अनलिमिटेड क्लब, हम क्लब मेंबर्स है, क्लब मेंबर्स के कुछ नियम होते हैं, जैसे रोटरी क्लब और कौन सा क्लब है वो, लायंस क्लब, कौन सा, इनर व्हील क्लब, अच्छा महिला तो ये भी एक क्लब है, अनलिमिटेड क्लब है ये यज्ञ, इसके हम मेंबर्स है। तो वो जो लायंस क्लब वाले कुछ ना कुछ सोचते ही रहते, क्या करे, कहां ब्लड डोनेशन करे, कहां कुछ करे, कुछ ना कुछ करे ताकि नाम वाला हो, तो हमें परमात्मा नाम वाला करना है, तो ये परमात्मा क्लब है, अनलिमिटेड क्लब है, लाफिंग क्लब। तो ये उसके बाद अनलिमिटेड एयरपोर्ट है, ये क्या है, अनलिमिटेड बेहद का एयरपोर्ट है, उड़ान अड्डा, यहां से उड़ान भरती है आत्माएं उस आलोक में, उस लोक में, ये वो एयरपोर्ट है, यहां से लैंडिंग होती है, ये बिना इसके कहीं और जा नहीं सकते, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, अगर परमधाम में उड़ना है तो यहां आना पड़ेगा। यहां से एक प्रश्न है सबसे, यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंसा है, ठीक है, ये दलदल है, बीचों बीच फंसा है उसके, और पूरा दलदली दलदल है, दलदली दलदल है, चहुओर आगे दलदल, पीछे दलदल, दाएं दलदल, बाएं आगे, दाएं बाएं दलदली दलदल, कैसे बचाओगे, एयर लिफ्ट क्या करना पड़ेगा, एयर लिफ्ट वही एकमात्र है, बाकी उससे बच नहीं सकता है वो। तो अशोक भाई सभी किस में फंसे हैं, दलदल में, तो कैसे निकालोगे, अच्छा अपने आप ही एयरलिफ्ट, वाह क्या बात है, मेरा बाबा बटन दबाओ और सीधा ऑटोमेटिक एयरलिफ्ट। तो ये अनलिमिटेड एयरपोर्ट एक पूरी अव्यक्त वाणी है, वो ढूंढना कौन सी है जिसमें बाबा ने एयरपोर्ट का वर्णन किया है, कितने कितने प्रकार के प्लेन यहां आते हैं, कैसे कैसे उड़ान लेते, तीन प्रकार के प्लेन, रिफाइन ऑयल वो तो उसमें है ही, पर एयरपोर्ट का वर्णन, एयर फ्लाइट का वर्णन तो हमेशा करते हैं, रिफाइंड ऑयल होना चाहिए, ये बटन होना चाहिए, स्मृति का बटन, रिफाइंड ऑयल, फिर उड़ो, वो तो है, पर एक दूसरी अव्यक्त वाणी है जिसमें एयरपोर्ट का वर्णन किया है कि यहां पर तीन प्रकार के प्लेन आते हैं लैंडिंग के लिए, वो ढूंढना कौन सी है। फिर उसके बाद में ये अनलिमिटेड पोस्ट ऑफिस है, हम सब कौन है, डाकिया डाक लाया, हमको डाक पहुंचाने हैं सब जगह पर, कौन सा डाक पहुंचाना है, परमात्मा चुका है, वो लोग खुशी का वो इंतजार कर रहे हैं, वो कौन सा गीत है, चिट्ठी आएगी, वो हमारी चिट्ठी की इंतजार कर रहे हैं, हाँ चिट्ठी वो भी है तो चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं, और चिट्ठी पहुंचाने वाले हम रूहानी डाकिया है, स्पिरिचुअल पोस्ट मास्टर्स, पोस्टमैन। तो ये अनलिमिटेड पोस्ट ऑफिस, फिर ये अनलिमिटेड कुंभ है, कुंभ अर्थात घड़ा, भगवान ने यह कुंभ का मेला आयोजित किया है कल्प के संगम युग पर, ये 54th अनलिमिटेड माइन है, माइन अर्थात खान, खदान, खान माइन, माइन खान, जहां पर सारे खजाने हैं गड़े हुए छिपे हुए। इसको पूरा कर दे या कल करे थोड़ा ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है ना चलो नाम गिना देते, आज पूरा कर देते इसको। वी, ये अनलिमिटेड वोटिंग बूथ है, वोटिंग बूथ, यहां पर चुनाव हो रहा है, चुनाव का बूथ है ये, रूहानी चुनाव बूथ, कौन क्या बनेगा उसका सब यहां हो रहा है। फिर उसके बाद में वेयर हाउस ऑफ सुप्रीम सेठ, अर्थात वो जो सेठ है परम, उसकी ये गोदान है। फिर उसके बाद में वर्ल्ड स्टेज है ये ड्रामा, ये यज्ञ क्या है, वर्ल्ड स्टेज जिसमें हम आए हैं। फिर उसके बाद में जीनियम हाउस, जीनियम अर्थात गिफ्ट, गिफ्ट हाउस है ये, यहाँ पे जिसको जो गिफ्ट चाहिए वो उसको मिल सकता है। जो जे वांछी लतो ते लाहो प्राणीजात, जिसको जो चाहिए वो यहां पर मिलेगा, जो भी जिसकी इच्छा है वो यहां पर मिलेगा। अच्छा रेलवे। फिर उसके बाद में ये यज्ञ है 61, 62, ये योगा सेंटर, एक बताया मेडिटेशन सेंटर ध्यान, एक है योगा, योगा अर्थात योग केंद्र, जहां पर योग के प्रयोग होते हैं, योग सिखाया जाता है। आज के मुरली में एक जगह बाबा ने कहा है ज्ञान और योग की, बहुत अच्छी पॉइंट है, एक टिकली टिकलू तो है ही नहीं, ज्ञान और योग से कुछ तो करो। चलो फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट 63rd, जोन ऑफ प्यूरिटी, जीरो जोन ऑफ प्यूरिटी, ये जोन ऑफ प्यूरिटी है। तो ऐसा ये जो यज्ञ है परमात्मा यज्ञ, उसका ये जो आशियाना है उसके ये 63 तिनके, और एक एक तिन का महत्वपूर्ण है। तो जब हम इस यज्ञ में है तो कितना हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था, मधुबन निवासियों से मुलाकात, तुम्हें अपने अधिकार ज्यादा याद रहते हैं, दायित्व कम। तुम्हें अधिकार बहुत याद रहते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, पर अधिकार की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भूल जाता है। इसके लिए अपने दायित्व को भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी याद करना है। अच्छा एक मिनट सब स्थिर बैठेंगे और स्वयं को संकल्प देना है कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूं और इस यज्ञ में हूं। तो ये यज्ञ ही सब कुछ है, ये विश्व को बताना है, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु।
उड़ गए कहीं बस घोंसले हैं हमी अस्तो।
हर जन्नत है जमीन पे कहीं यहीं पे है हमिया।